Ya Ali Madad. Al-Wise, Rai Abu Ali Mishnari, Wise number 709.
Mishnariyon mein hamesha jab imam aate the, do do char char panch panch chhe chhe ghante baithte the. Ek dafa hum is qadar khush naseeb bane کہ امام نے ہمارے ساتھ 9 گھنٹے گزارے, کیونکہ ان 9 گھنٹوں میں تھوڑا سا بریک بھی ہوتا تھا. تو امام کے حضور میں عرض کی کہ خداوند, مشنریوں کے درمیان آپس کے اندر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ راگ کے متعلق, کہ بھئی کون سا راگ ٹھیک ہے. امام نے ابرپٹلی فرمایا, فالو جوناگڑھ. آمین. تو امام کے حضور میں سے یہ ڈائریکشن ملی کہ جوناگڑھ کے جو اصل راگ جوناگڑھ کی جماعت میں بولے جاتے تھے, وہ راگ تم جماعت خانوں کے اندر بولو. جوناگڑھ کے آدمی پکڑے گئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں وزیر اسماعیل نے گنانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت محنت کی, اور اتنا ہی نہیں, اس نے ہندوستان کے پرانے پرانے بھگتوں کو اکٹھا کیا اور ان سے جماعت کے اندر گنان بلوائے. تو جوناگڑھ کے جو راگ ہیں وہ راگ ہیں کہ جو پیروں کے زمانے سے آہستہ آہستہ نسل با نسل اترتے چلے آئے. تو میں نے بیٹھے بیٹھے یہ خیال کیا کہ ایک مشنری کے طور پر میرا یہ فرض ہے کہ جماعت کو میں رائٹ رستے کے اوپر, کہ جس پہ امام نے فرمان فرمائے ہوئے ہیں, دھیان کھینچوں. مولانا حضرت امام کو صلوات و سلام میں نے یہ چند باتیں آپ کو دیباچے کے طور پہ کہیں. میں ابھی جو گنان بولتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ بولے, اس لیے کہ میں خود کہیں پھسل نہ جاؤں. اور وہ گنان آج بولا گیا, مٹھا شاہ سمجھوں میں تیرو اے جی, آنکھ لڑی جوئی جوئی تھا کی, کیا رے آمیں مرو شام اور تک جانی آئے پڑوں والا نمی نمی کروں پرنام مٹھا شاہ میں سمروں تے یا شاہ سمروں میں تیرو نام خدا وندہ سمروں میں تیرو نام. पीर फाजल शाह पुठियों के पीर नहीं थे, पीर हसन कबीर दीन की औलाद में से थे। गुरपीर सदरदीन के पांच फर्जंद थे। पांच फर्जंदों में से दो फर्जंदों को पीरी जौमा मिला, जो जौमे के पीर हैं उनके पास नबी का नूर है। अपनी मेरी आवाजों में या इमाम के फरमानों में सुना होगा कि जो इमामत का नूर है वो अल्लाह का नूर है, अली का नूर है, और जो पीर का नूर है वो नबूवत का नूर है। तो क्या नबूवत का नूर अल्लाह का नूर नहीं है? है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह के जो 99 नाम हैं, इन नामों के अलावा खुदा के और बहुत से नाम हैं, लेकिन वो 99 नाम जो कुरान शरीफ के अंदर हैं, मैं आपको साहिबी और पीरी जौमा कुरान में से निकाल के बता रहा हूं कि हमारे मजहब के अंदर शाह और पीर है। मुसलमानों को तो पीर का पता नहीं है, और मैं हमेशा वाज़ों में यह कहता रहता हूं कि अभी हमारा जो मजहब है वो प्योरली इस्लाम है, हमें समझ नहीं आती वो और बात है। तो अल्लाह के इन 99 नामों में से दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिनको कहते हैं जलाली, दूसरा ग्रुप है उनको कहते हैं जमाली। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं ऑर्डिनरी मुल्ला मौलवियों को भी पता नहीं, लेकिन जो बहुत आलिम अल्लामा हैं उनके साथ जाके आप बैठ के बात करोगे तो वो कहेंगे सच है। खुदा के जो जलाली नाम हैं वो नाम जबरदस्त हैं, गर्म हैं, ताकत वाले हैं। जैसे कि मिसाल दूं आपको, कहार, अल्लाह ताला जब्बार है, जब्बार कहते हैं जबरदस्त को, कहार कहते हैं गुस्सा करने वाला, पनिश करने वाला, ये जलाली नाम है। फिर वो नाम है कि जिनको हम जमाली कहते हैं, जमाली नाम का मतलब नरम, काइंड, जेंटल, अर्रहमान ये खुदा का जमाली नाम है, अर्रहीम ये खुदा का जमाली नाम है, अर्रऊफ तरस खाने वाला ये जमाली नाम है, अर्रज्जाक रोजी देने वाला ये जमाली नाम है, अल अकबर ये जलाली नाम है, अल कबीर ये जलाली नाम है। तो अल्लाह के नामों के अंदर जलाली हैं और जमाली हैं। जो जमाली सिफत है वो नबी की सिफत है। अल्लाह ने अपने जमाली नूर में से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, और जो उसकी जलाली सिफत है वो इमामों के अंदर वादियत फरमाई। इसके लिए नूर दोनों अल्लाह ही के हैं, मगर अल्लाह की सिफात के अंदर से जलाली भी है जमाली भी है। जलाली सिफत जो है वो इमाम की है, जमाली सिफत है वो नबी की या पीर की है। इसके लिए जो पीर हैं वो जमाली हैं, आजजी करते हैं, विनती करते हैं, और इमामों के जो फरमान होते हैं जलाली हालत में उसके अंदर हम लोगों को कभी कभी गुस्सा भी करता है इमाम। तो ये जो दो सिफतें हैं अल्लाह की हैं। हमारे यहां जो पीर हैं उन्होंने वही काम किया कि जो नबियों के ऊपर खुदा ने रखा, यानी मजहब का फैलाव करो, प्रोपेगेंडा करो, मजहब सिखाओ, اور پیروں نے بڑے دکھ اٹھائے. اب کبھی اسلام کی تاریخ پڑھو, رسول اللہ نے کبھی تلوار نہ اٹھائی, کیونکہ جمالی صفت ہے. تلوار تو علی اٹھاتا رہا کیونکہ وہ جلالی صفت ہے, نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ علی نے ہی تلوار اٹھائی. ارے دین دارو, ہم جو اسماعیلی ہیں ان کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں. میں نے اپنی ایک واعظ میں ایک دو دن پہلے ہی کہا کہ ہم نبی کو پیدائش سے نبی مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ 40 برس کے بعد نبی بنا اور 40 برس تک وہ نبی نہیں تھا. ہم نہیں کہتے, ہم تو اس کو پیدائش سے ہی نبی مانتے ہیں. تو پھر 40 برس تک ٹھہرا کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو تلوار نہیں اٹھاتا, نبی تو لڑنے نہیں جاتا, اس کو پروٹیکشن چاہیے. تو پروٹیکشن کے لیے ٹھہرے کہ علی پیدا ہو رہے. علی پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی تو علی کام نہیں کر سکتا, تو ٹھہرے. مولا علی جب 10 برس کے ہوئے تو 10 برس کی عمر کے اندر مولا ایسے طاقت والے تھے کہ ایک سارے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتے تھے. تو اس وقت جب دیکھا کہ ابھی علی تیار ہو گیا ہے تو اپنی نبوت کا اظہار کیا. پروپیگینڈا, مذہب کا وعظ نصیحت اور لوگوں کو ہدایت کرنے کا کام نبی کا ہے جو پیروں نے لیا. تو پیروں میں وہ پیر جن کے پاس جامع ہے, جیسے کہ پیر شمس, پیر صدر الدین, پیر تاج الدین, پیر حسن کبیر دین, یہ سب کٹھیوں کے پیر ہیں. ان کے پاس نبی کا نور تھا. وہ جامع اترتے اترتے آج تک حضرت امام تک 50 پیر ہوئے. مولانا حضرت امام 50ویں پیر ہیں اور 49ویں امام ہیں. تو شاہ اور پیر آج ساتھ ہیں, پر ایسا بہت دفعہ ہوا کہ شاہ اور پیر ساتھ ہو جائیں. اس کے پہلے بھی ہوا, ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تو اس کے بعد اللہ نے خوش ہو کے فرمایا, انی جاعلک للناس اماما, اب میں تم کو لوگوں کے اندر امامت کا درجہ دیتا ہوں. تو وہ پیر بھی بنے, شاہ بھی بنے. جیسے کہ علی شاہ ماں باپ اپنے باپ حسن علی شاہ کے ساتھ ایران سے آئے تو حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس امامت کا جامع تھا, تو علی شاہ ماں باپ پیر تھے. حسن علی شاہ ماں باپ نے جامع امامت کا پورا کیا تو صاحبی جامع بھی, یعنی امامت کا جامع بھی علی شاہ کے پاس آیا, پیری جامع بھی خود کے پاس تھا. پھر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنے بڑے فرزند شاہب الدین شاہ کو, جو سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے, ان کو علی شاہ ماں باپ نے اپنا جامع پیری دے دیا. ایسا بھی ہوا ہے کہ امام حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی امامت کے بارے میں اپنی ماں کو, سرکار بی بی ماتا سلامت کو, پیری جامع دیا. تو ہمارے پیر صدر الدین کی 5 فرزند تھے, اس میں سے 2, ایک پیر حسن کبیر دین, دوسرے پیر تاج الدین. پیر تاج الدین بڑے تھے, پیر حسن کبیر دین سب سے چھوٹے تھے. پیر تاج الدین کی اولاد نہ ہوئی, لیکن پیر حسن کبیر دین کی بہت اولاد ہوئی. 18 فرزند تھے, 1 بیٹی تھی. تو ان 18 کے 18 فرزندوں نے اور بیٹی بائی بوڑھائی نے ہمارے مذہب کی بہت خدمت کی ہے. ان 18 فرزندوں میں سے جو اولاد ہوئی اس میں سے آخری امام بیگم تھیں. कि जो इमाम हसन अली शाह के ज़माने में 1866 में बम्बई के अंदर और बाद जगह लिखा है कि कराची के अंदर गुजर गई। तो इन पीरों के अंदर पीरों की औलाद में उन्होंने मिशनरी के तौर पे अपने बाप के हाथ के नीचे या चाचा के हाथ के नीचे या दादा के हाथ के नीचे इस्माइली मजहब की दावत की। खुद पीर सदरदीन 100 बरस की उम्र हुई जब उनकी तब वो पीर बने। पीर सदरदीन 100 बरस की उम्र में पीर बने और 19 बरस तक उनकी पीरी जामा चला। 119 बरस की उम्र में पीर सदरदीन ने वफात पाई। 100 बरस की उम्र तक वो अपने बाप दादाओं और परदादा के हाथ के नीचे दावत का काम करते रहे। पीर सदरदीन को मजहब की तालीम देने वाले उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे यानी परदादा, और परदादे का नाम क्या था? पीर शम्स। पीर शम्स के जो बेटे थे पीर नसीरुद्दीन थे। पीर नसीरुद्दीन के बेटे पीर साहिबुद्दीन थे। पीर साहिबुद्दीन के बेटे पीर सदरुद्दीन थे। तो इन सब को पीर शम्स ने ट्रेन किया। पीर शम्स अपनी मन समझानी में लिखते हैं कि उनकी 240 बरस की उम्र थी। मैंने किताबें बहुत देखी बाहर की, फारसी और दूसरी, उसके अंदर से 120 बरस की उम्र का पता लगता है लेकिन मन समझानी में 240 बरस की उम्र है पीर शम्स की। तो इन पीरों में से जिनके पास साहिबी जामा की तरह पीरी जामा नहीं है उनको भी हम पीरों की औलाद के हिसाब से इज्जत देते हैं। आज ऐसा मानो कि शाहजादा अमीन मोहम्मद इधर आ जाएं तो हम उनको इज्जत देंगे क्योंकि हमारे मौला का भाई है, या शहजादा रहीम आ जाएं तो उनके पास ना इमामत है ना पीरी है मगर हमारे मौला का बेटा है, हम आंखों पे बिठाएंगे। तो हम अपने पीरों की औलाद को भी ऐसी ही इज्जत करते हैं। उनमें से एक पीर फाजल शाह थे। उन्होंने ये बहुत ही मीठा गीनान लिखा है, बहुत बरस हुए इमाम का दीदार ना किया तो कहते हैं मेरी आंखें तरस रही हैं, मैं राह देख रहा हूं, आंख लड़ी जोई जोई था कि टिकटिकी लगा के रास्ते को देखते देखते मेरी आंखें थक गई, प्यारे आवे मारो शाम। शाम का मतलब प्यारा। प्राकृत जबान के अंदर और देवनागरी के अंदर इसी तरह से गुजराती के अंदर शाम कहते हैं प्यारे को। शाम का एक और मतलब भी है सांवला, जिसका रंग जरा सांवला होवे, जरा डार्क रंग का होवे, उसको भी श्याम कहते हैं। मगर जहां जहां गिनानों के अंदर शाम है वो कृष्ण नहीं, शाम से मुराद प्यारा, जिसको हम प्यार करते हैं, उसको हम महबूब के तरीके पे लेते हैं। मेरा महबूब कब आए उसकी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गईं। और ऐसी आंखें थकी हैं, मैं ये आजिज़ी और आरजू कर रहा हूं कि मेरे पास आवे तो मैं उसको परतक यानी जाहिर देख के मैं उसके पांव पड़ूं। परतक यानी जब मुझे पता लगे कि आया है, मेरे सामने हाजिर हो गया, मैं उसको पांव पड़ूं और नमी नमी करूं प्रणाम, झुक झुक के मैं आदाब करूं सलाम करूं। उसको जाहिर देखा। डॉक्टर इकबाल पाकिस्तान के एक मशहूर शायर हुए हैं, लाहौर में पैदा हुए, बाज कहते हैं सियालकोट में पैदा हुए। चलो सियालकोट में होंगे, میں وہ کنٹروورسی میں نہیں جاتا, لیکن لاہور میں رہے, لاہور میں گزر گئے. ان کی زندگی کے جو آخری 8 سال گزرے, وہ 8 سال ان کی ساری زندگی سے بالکل جدا تھے. ڈاکٹر سر محمد اقبال شراب پیا کرتے تھے, مسجد میں نہیں جاتے تھے, معلوم نہیں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے. جب انہوں نے شکوہ لکھا تو ملا نے بڑا شور مچایا, ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. ایک دفعہ کہتے ہیں, زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا. یہ جو تنگ نظر ملا ہیں نا, انہوں نے میرے کو کافر سمجھ لیا ہے, کیونکہ مسجد میں نہیں جاتا, ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا, اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. تو ان کی زندگی کے بعد میں انہوں نے شرح چھوڑ دی. آخری 8 سال بہت صاف نکلے, اور 8 سال ان کی زندگی کا ایسنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی آئے حقیقت منتظر, پھر فاضل شاہ کے یہ گھنان کی جو پہلی کڑی ہے اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں اقبال کے لفظوں میں. دنیا کے اندر جو عابد ہیں, دنیا میں جو اللہ کے عاشق ہیں, دنیا کے اندر جو پاک لوگ ہیں, دنیا کے اندر جو اعلیٰ و عرفا روحوں کے مالک ہیں, وہ دنیا کی کسی بھی قوم میں ہوں, دنیا میں کسی بھی زمانے کے اندر ہوں, ان کے خیالات قریباً قریباً ملتے ہیں, کیونکہ سب کا محبوب ایک ہی ہے. تو کہتے ہیں ابھی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ کے سوا دوسری کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تو اس حقیقت کو, یعنی سچائی کیا ہے؟ خود خدا تعالی, الہی نور ہے, وہ سب سے بڑی حقیقت ہے. تو کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, اے اللہ تو کسی دن میرے سامنے انسان کی شکل میں آ کے کھڑا ہو جا. کیا سی تمنا کی ہے, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, میری پیشانی میں کھجلی ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے کہ میں سجدہ کروں. کس کو کروں؟ کسی مسلمان کو پوچھو کہ تم سجدہ کرتے ہو, ان کی نظر کے سامنے, ان کے تخیل میں کون سی چیز ہے, کس کو سجدہ کرتے؟ کہتے اللہ کو. اچھا, اللہ کو کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا. کعبہ میں جاتے ہیں تو سامنے وہ حجرِ اسود ہے, اس کو نظر میں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. بس نا, ان کو کوئی چیز کی شناخت تو ہے نہیں. اقبال نے ظاہر طور پہ شریعت سے اپنے آپ کو جدا کر کے, بلکہ میں یوں کہوں کہ شریعت کے خلاف بغاوت کر دی. کہتا ہے میں تو سجدہ تب کروں گا جب میں تجھے آنکھ سے دیکھ لوں. اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. بہت اچھا شعر ہے. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کبھی مجھے ایسا خیال ہوا کہ چلو بھائی مسلمان ہوں, میں نماز پڑھ لوں. ایسا بھی ہو گیا, جو میں سرب سجدہ ہوا, کبھی کبھی مجھ کو ایسا خیال ہوا تو چلو بھائی میں نے سجدہ کر لیا, تو زمین میرے کو کہتی ہے, جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दो मतलब हो गए। जमीन कहने लगी, अरे तुझको नमाज की क्या जरूरत, तू तो अपने माशूक को जानता है, वो हर वक्त तेरे दिल में बैठा। आंख लड़ी, जोई जोई था, राह देख देख के मेरी आंखें थक गईं, कब मेरा महबूब आवे मेरे सामने जाहिर खड़ा हो जाए, तो मैं इस सजदा करूं पांव पड़ूं और नमी नमी करूं प्रणाम। मिठा शाह मेरे महबूब, शीरीन प्यारे महबूब, मैं तेरे नाम का जिक्र कर रहा, समरू में तेरा नाम। समरन कहते हैं याद करना, जिसको अरबी में जिक्र कहते हैं। जिक्र अल्लाह कसीरा, अल्लाह का बहुत जिक्र करो। जिक्र का मतलब याद करना, जिक्र का मतलब रिपीट करना नहीं, जिक्र का मतलब है याद करना। जिक्र अल्लाह कसीरा बुकरतम व असीला, सुबह भी याद करो शाम को भी याद करो। तो ये जो जिक्र है खुदा का, याद उसकी, उसकी याद दिलों में रहती है। जबान से पुकारने से कुछ नहीं होता, तस्बीह निकलती है। अगर हमारा ख्याल उस लफ्ज में है, या अली या मोहम्मद या अल्लाह या रहमान या करीम या हमीद या मजीद या रज़ाक, इस किस्म के खुदा के नाम हमारे दिल के अंदर से पैदा होते हैं, हमारा ख्याल उनके अंदर परोया जाता है, और हर खुदा के नाम के अंदर एक खास कुव्वत है। वो आज मैं आपको जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन हर एक नाम की एक खासियत है। सिर्फ आपको एक मिसाल के तौर पे कह दूं, खुदा न खास्ता किसी शख्स की रोजी तंग है, गधे की तरह मजदूरी करता है सुबह से शाम तक, और उसको खाना भी पूरा नहीं मिलता, तो उसको कहो कि या रज़ाक की तस्बीह निकाले, 101 दाने की खड़े होकर तस्बीह निकाले, हर रोज कम से कम 3 दफा ऐसा करे, इंशाल्लाह उसकी रोजी खुल जाएगी, उसको आसानी से रोजी देगा। खुदा के हर नाम के अंदर एक खासियत है। तो अल्लाह ताला के जो जहूर है, वो जहूर सिर्फ खुदा ने अपनी कुदरत में नहीं रखा, और भी जगह रखा है, और वो इंसान का दिल है। परतक जानी, हाजर समझ के, हाजर जोमे को अपने सामने मौजूद समझ के, मैं उसके पांव पड़ूं और झुक झुक के सलाम करूं, ये झुकना और रुकू करना है, सर तस्लीम खम है, वो सजदा है। या मौला मीठा शाह, मैं समरूं तेरो नाम, ऐ खुदावंदा मैं तुझे बहुत याद करता हूं, मैं तुझे बहुत याद करता हूं। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहिबा, अब तेरी मोहब्बत लागी। देखो गिनानों के अंदर लफ्जों का जोड़ तोड़ इस तरह रखा है पीरों ने, जिस तरह कुरान पाक की तिलावत होती है तो अंदर झुनझुनाहट होती है। कुरान पाक की तिलावत के अंदर एक किस्म का रिदम है, ताल जिसको कहते हैं, ऐसा ही गिनानों के अंदर ताल है, रिदम है। जब ताल से हम बोलते बोलते निकल जाते हैं तो ऐसा होता है कि बिरयानी खाते खाते वो चावलों के अंदर से एक पत्थर दांत के नीचे आ गया तो कैसा लगता है। ऐसा ताल में से निकल जाता है इंसान। जो आदमी की आदत यह है कि मुंह में लुकमा डाला और उतार लिया, उसको पता नहीं लगेगा क्योंकि वो पत्थर भी निकल गया है, चबाना तो की बात ही किधर है। ऐसा ही ज्ञान भी जो है, जो समझदार हैं उनको घिनानों का एक एक चावल के एक एक दाने की तरह चबा चबा के स्वाद मिलता है। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहेब, अब तेरी मोहब्बत लागी। कैसी हालत होगी, वो महबूब है ना, वो हमेशा उसकी आदत है, अल्लाह की आदत भी है। अल्लाह से प्यार करोगे तो बढ़िया छैल छबीलियां करेगा वो, अगर प्यार नहीं करोगे तो बैठे रहो एक जगह। छैल छबीला ए सुनो अलबेला, छैल छबीला अलबेला, ए सुनो अलबेला, मोहब्बत लावो मेरे साहेब, अब तेरी मोहब्बत लागी। रो रो के उसकी जुदाई की फीलिंग करके, एहसास करके पिशमस के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं। तू छेल छबीला मेरे से अटखेलियां करता है, मुझे सता रहा है, मुझे पिंच कर रहा है, मुझे जुदाई के सदमे पहुंचा रहा है, मेहरबानी कर अपने दिल में भी मेरी मोहब्बत को फील कर। गिना दिनदारों इंजेक्शन है, शराब मोहब्बत से भरे हुए आए जमात खाने में। पढ़ो गिनान, एक गिनान बोल दिया, ड्यूटी पूरी, किसी ने बातें की, कोई उठ के बाहर गया, उसने घुसफुस की, गिनान तो सुना ही नहीं, टाइम ही गुजारना था गुजर गया। मुखी कामरिया नहीं आए, दो चार भाई भाइयों ने गिनान बोल दिए, चले गए। और फिर पहली दुआ पड़ी गई, तस्बीह निकाल के बैठ गए मजीदा पर, चलो कोई गिनान बोलो। गिनान कहको बोलते हैं, टाइम निकालने के लिए, और कुछ नहीं। हमारे जमात खानों में तो यही है ना, गिनान बोलो, आप गिनान के अंदर मिक्स हो जाओ, गिनान के अंदर मिक्स हो जाओ, गिनान आपको खा जावे, आपकी हस्ती गिनान मिटा डाले, फिर आपको गिनान का पता लगे, तब आपको मालूम हो। गिनान में बहुत सी चीजें हैं, जमीन आसमान का इल्म है गिनानों के अंदर, हमको पता ही नहीं गिनान क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है एक जगह, जो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं। कुरान पाक की आयत इस तरह है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझको जो याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं। जी हम तुम प्रीत बंधानियां, मेरी तेरी मोहब्बत बंधी है, हम तुम बोलिया بول تیرا میرا وعدہ ہوا ہے, ایک دوسرے کو قول اقرار دیا ہے. ہم تم دونوں سایہ ایک ہے, اے سایہ ہم سو پردہ کھول. تو میں ایک ہے, تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا ہے, تو نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں تو ہوں تو میں ہے. ڈاکٹر اقبال پھر یاد آتا ہے, اللہ کو کہتا ہے نمود تیری, بندے کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے لیے کہتا ہے, یعنی بندہ اگر زندہ ہے حیات ہے تو یہ ثابت ہے کہ خدا ہے, نہیں تو تجھے بنایا کس نے؟ کیا انسان خود بخود پیدا ہو گیا؟ خدا کو حاضر سمجھ کے وہ بندے کی طرف اشارہ کرتا ہے, نمود تیری نمود اس کی, اگر تو ہے تو وہ ہے, نمود اس کی نمود تیری, اگر وہ ہے تو تو بھی ہے. خدا کو تو بے حجاب کر دے, خدا تجھے بے حجاب کر دے. اگر تو خدا کے سامنے تو نے جو پردے ڈال رکھے ہیں اپنے دل کے اندر ان کو اٹھا ڈالے گا تو خدا بھی پردے ہٹا دے گا, تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. تو اس اشارے کو پیر فاضل شاہ کہتے ہیں, اے مولا تیری میری محبت تو بڑی پرانی ہے, ایسا نہیں کہ آج میں نے تجھے دیکھا اور آج ہی میں نے تیرے سے محبت کی. کہتے نہیں, دو بچپن کے یار دوست چھوٹی عمر سے کھیل کھیل کے جب بڑے ہوتے ہیں وہ محبت بڑی پکی ہوتی ہے. اے جی باڑ پنانی پری تڑی مولا تو سے لا دل بن گیا ہے, نہرو لاگیو شاہ نور در سے کیا جانے گمار مٹھا شاہ میں سمروں تے رو سمروں میں تیرو نام خدا وندا سمروں میں تیرو نام. میری تیری محبت چھوٹ پن سے, یہاں اشارہ چھوٹ پن سے یہ زندگی نہیں, جب اس کے نور سے میرا روح جدا ہوا اس وقت سے, میری تیری محبت اس وقت سے ہے, اس پیمانے سے. میں تو تجھے پیار کرتا آیا ہوں اور میری محبت تو تیری چوکھٹ یعنی دروازے کی جو دلہیز ہے اس کو کہتے ہیں, محبوب کی چوکھٹ کی جو راہ ہے اس کو بھی عاشق بڑی عزت سے دیکھتا ہے. करनाते हैं। बालपणानी प्रीतड़ी तोसे लागी, नेहरो लागो शाह नूर दर से। मौला के नूर के दर यानी जमात खाना, उसका घर, उसका घर सिर्फ जमात खाना नहीं, उसका घर उसकी फैमिली अहले बैत, उसका घर सिर्फ अहले बैत ही नहीं, अरे ये जो दिल है ना, ये उसका घर है। हमारा दिल जिसमें मौला रहता है ये उसका घर है। ये तो ईंट पत्थर का जमाखाना है, इसको छोड़ के किसी और जगह चले जाओगे तो ये जमाखाना तो हर उड़ गया, फिर वो जमाखाना हो गया। ईंट पत्थर को जमाखाना नहीं कह, सतगुर कह रहे दिल माहे देवल पूजिए। मंदिर जो है ना, देवल कहते हैं मंदिर को जहां इबादत की जाती है, मस्जिद है, जमाखाना है, गिरजा है, ये देवल है। सतगुर कह रहे दिल माहे देवल पूजिए, अने दिल माहे देवा द्वार। तुम्हारा दिल उसका घर है। ए दिल माहे साया आपे वसे, अने दिल माहे आपे दीदार रे। भाई दिल माहे आपे दीदार, तुमको दीदार भी अंदर मिलेगा, वही उसका घर है। तो फिर फादर शाह कहते हैं, या मौला मुझे तो तेरे घर से मोहब्बत हो गई, अली के घर के हम गुलाम हैं। उस घर का मतलब हजरत इमाम की जो फैमिली है, हजरत इमाम का घर है, हजरत इमाम का रहना हमारे दिल में है। ये सब हर उस चीज के साथ, या जिस चीज के साथ हमारे मौला को मोहब्बत है, या जो चीज मेरे मौला को पसंद है, हमें वो हर चीज पसंद है। ये इधर माएं बैठी हैं, बच्चा छोटा है, खेलते खेलते जमीन पे सो गया, मां आके उसको उठाती है, कलेजे से लगाती है, एक बोसा देती है, सुला देती है, जब सो जाता है फिर वापस आती है। उसके बिखरे हुए खिलौने, कागज के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े और भी कई ऐसी चीजें के जो हम फेंक देते हैं, वो इकट्ठे करके एक डब्बे में या किसी जगह में रख के संभाल देती है। क्यों, ये तो फेंकने की चीजें थी, लेकिन नहीं, मेरे महबूब को, उसका महबूब बच्चा है, मेरे महबूब को जो चीजें पसंद हैं उसको कितना संभाल के रखती है। मौला भी हमारा महबूब है और उसकी वो तमाम चीजें जो उसको पसंद है वो हमें पसंद है। उसको पसंद है सच बोलो, उसको पसंद है एक दूसरे की मदद करो, उसको पसंद है इत्तेफाक से रहो, उसको पसंद है शाम को जमात खाने आओ, उसको पसंद है माँ बाप की इज्जत और उनकी खिदमत करो, उसको पसंद है बड़ों की इज्जत करो, उसको पसंद है छोटों से मोहब्बत करो, ख्याल रखो। वो तमाम चीजें जो उसने हमें फरमाई हैं वो उसे पसंद हैं। अगर हमें हजरत इमाम के साथ मोहब्बत है तो दीनदारों हमें वो सब चीजें पसंद हैं जो उसको पसंद हैं। जैसे माँ लकड़ी के टुकड़े, कागज के टुकड़े, टूटी फूटी चीजें जिससे उसका बच्चा खेलता रहता है, सब इकट्ठा जमा करके रख देती संभाल के, मेरे बच्चे को फिर खेलने में मजा देंगी। हमारा मौला अगर उसको ये पसंद है कि तुम अपनी कमानी कमा के उसमें से 7 हिस्से रख लो, 1 मुझको दे दो, तो क्या आप मोहब्बत पैसे से करते हो इमाम से करते हो? खर्च पूरा नहीं होता मिशनरी साहब, हाँ, क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं। और जब तंगी आएगी, जब वो इम्तिहान लेगा तो सख्त इम्तिहान लेता है, यही तो बात है। और मोहब्बत करने जाओगे तो मोहब्बत का इम्तिहान तो जरूर होने वाला है, आज नहीं होएगा कल होएगा, एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से मोहब्बत का इम्तिहान होने ही वाला है। अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो दीनदारों इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो, और दुख के अंदर घबराना नहीं। मैं छोटा था, 4-1 बरस की उम्र, मेरे अब्बा जान जरा मोटे थे, हैवी थे, कुछ ऊपर एक चीज पड़ी थी उतारनी थी, मुझे कहा ऊपर चलो, सीढ़ी लगाई। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ता, मैं गिर पड़ूंगा। फरमाया कुछ नहीं, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे हिम्मत आ गई। जब उन्होंने कहा कि मैं इधर खड़ा हूं और एक पांव रख दिया सीढ़ी के नीचे, तो मैं फराफर ऊपर चढ़ गया, मुझे कोई डर ना रहा। मुझे यह ख्याल था कि कभी गिरूंगा तो मेरा अब्बा खड़ा है। अगर दुनिया की मुसीबतें आई हैं तो घबराहट किसकी, उसको साथ रखो, उसको साथ रखो, वो है साथ है, कहीं नहीं गया। और अपनी तकलीफ में उसको याद करोगे, खुदा की कसम वो उधर ही है, कहीं नहीं गया, और वो हमेशा मदद करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। मैं अभी आपको जो एक वाकया सुनाता हूं, ऐसे तो बहुत से वाकयात हमारे इमामों के जमाने में हुए, वो तो तुम्हारा सिर्फ महज दिल देखता है, लेकिन बात यह है दीनदारों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने इंसान को बड़ी उजलत में पैदा किया। उजलत कहते हैं जल्दी तबीयत, इंसान के अंदर सब्र कम है, और खसूसन मुसीबत या तकलीफ में दुख में हम जल्दी घबरा जाते हैं, हमारी नेचर है। और ये नेचर इसलिए अल्लाह ने रखी कि घबराहट से हम उसको याद करते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हिंदुस्तान में आने वाले थे, उस जमाने के अंदर सुल्तान मोहम्मद शाह की मां हिंदुस्तान में रहती थी, मां को मिलने से हमेशा हम लोगों को फायदा होता था, बहाना करता था कि मां को मिलने आया हूं, 2-2 महीने 3-3 महीने बंबई में पूना में रहे, हर साल आते थे। वैसा ही एक जमाना जमातों के अंदर खबरें आईं कि इमाम 1 महीने के बाद हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे, बंबई से ये खबरें सारे हिंदुस्तान में फैल गईं। काठियावाड़ के किसी छोटे से गांव के अंदर ये खबर आई कि इमाम आते महीने बंबई आते हैं, छोटा सा गांव था, तकरीबन सब के सब किसान खेती बाड़ी करने वाले गरीब आदमी थे, मिट्टी के मकानों में रहते थे। एक इस्माइली फैमिली, बूढ़ा बाप, बच्चों की बूढ़ी मां और उसके 7-8 बच्चे, उन बच्चों में से बहुत सी शादियां हो गई थी तो उनके बच्चे भी, तो 40-42 आदमियों की फैमिली थी, सब खेती करते थे। जमा खाने से सुन के जब ही घर पे आए तो रात को खिचड़ी खाते खाते बूढ़ा बड़े लड़के को कहता है, बेटा सुना आज? हाँ बापा सुना, मौला आते हैं। बेटा तेरे को मालूम है कितने बरस हुए कभी इमाम का बहुत बरसों से दीदार नहीं किया, اگر تو بندوبست کر دے رہے تو اس کایا کا کوئی بھروسہ نہیں, بوڑھا ہو گیا ہوں, تو آخری وقت ایک دفعہ دیدار کر لوں. باپا جاؤ, خوشی سے جاؤ. ماں بیمار تھی اس کے لیے اس کو ساتھ نہ کیا. باپ خوش ہو گیا, جانے کی تیاریاں ہوئی. ان کے کھیت کے اندر انہوں نے تھوڑا وقت پہلے خربوزے ڈالے تھے, چیبڑے, جس کو انگلش کے اندر میلن کہتے ہیں. جب یہ تیاری ہو گئی, تھوڑے بہت پیسے کسی سے ادھار لے کے ٹکٹ وغیرہ کے لیے لے آیا. اپنے گھر سے 5-7 میل دور ریلوے اسٹیشن تھا, بیل گاڑی جوت کے تو باپ کو ادھر پہنچایا اور باپ ادھر سے نکلا. لیکن نکلنے سے پہلے بیٹے کو کہا, بیٹا ہمارے پاس پیسے تو نہیں کہ مولا کی مہمانی رکھ سکیں, 136 روپے مہمانی کے, 14 روپے فروٹ کے لیتے تھے. ان غریبوں کے پاس 150 روپیہ کہاں سے, 150 روپیہ بھی مشکل سے ہو گئے, ٹکٹ کے پیسے بھی ادھار لیے. تو بیٹا خالی ہاتھ مولا کے پاس کیسے جاؤں؟ تو ابا کیا چاہیے؟ دیکھو کھیت میں سے تھوڑے سے خربوزے لے آؤ, چلو کسی کی جماعت کی مہمانی میں کہیں نہ کہیں رکھ دیں گے, مولا ہمارے گھر کی کوئی چیز تو کھائے. چھوٹا لڑکا گیا کھیت میں سے تھوڑے سے چیبڑے یعنی خربوزے لے آیا, دھو دھا کے صاف کیے, مٹی نکالی اور کپڑے کے ایک تھیلے کے اندر باندھ کے باپ کو چھوڑ آئے. باپ آیا بمبئی, بمبئی اتر کے عام طور پہ مسافر کہاں چاہتے تھے, حسن آباد چلے آتے تھے, کہیں ایک کونے کے اندر اپنا ایک چھوٹی سی پیٹی یا بستر رکھ دیا, دن کو ادھر ادھر کھا لیا اور حسن آباد کا جو بہت بڑا پڑتھار اور میدان ہے وہاں سو جاتے تھے. بوڑھا بھی آیا سینٹرل اسٹیشن میں اتر کے حسن آباد آیا. عموماً مومنے لوگ وہ زمانے کے اندر گھوڑا گھڑی چلاتے تھے. حسن آباد آیا, ابھی کرنا مولا کا ایسا ہوا کہ صبح یہ آیا تو اسی ہی دن مولا کا پروگرام 10 بجے حسن آباد میں تھا. بہت خوش ہوا. ابھی اس کو 2-3 دن نکل گئے تھے. ایک دن پہلے تو چیبڑے نکال کے رکشے صاف کیے, دوسرے دن صبح یہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو بمبئی تک آنے کے لیے ایک دن اور رات چاہیے, بلکہ 1.5 دن چاہیے. ادھر ادھر لگ لگ کے وزن کے اندر یہ جو خربوزے تھے نرم پڑ گئے. جب ادھر آیا منہ ہاتھ دھو کے, کیونکہ حضر امام آتے تھے 10 بجے, 2 گھنٹے پہلے آیا. بہت خوش ہوا کہ آج ہی مولا کی ملاقات بھی ہوگی تو میں یہ مہمانی بھی رکھوں. اپنا سامان رکھ کے کسی کے گھر پہ تو وہ تھیلی جس میں خربوزے تھے وہ لے کے آیا. خوشی خوشی گیا کسی عملدار کے سامنے, باپا میں فلانی جگہ سے آتا ہوں, یہ مولا کے لیے میں خربوزے لایا ہوں. دیکھو وہ کامڑیا سب ہے نا, اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس گئے, اس نے خربوزے دیکھے تو سب نرم ہو چکے تھے. باپا آبی چیز مولا نے کھورا بچو, یہ تو پھینکی دیو. اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا. کسان آدمی, گاؤں کا آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا, جس مال کے اوپر اس نے مولا کی نیت لگائی اس کے لیے یہ آدمی کہتا پھینک دو, اس کے تو کلیجے کے اوپر صدمہ پہنچا. اس کی آنکھ دیکھ کے چپ ہو گیا, دوسرے کے پاس گیا. ابھی مال نرم ہو گیا تھا, حقیقت میں وہ کھانے کے لائق نہیں رہے. वो जो अमलदार थे वो सच कहते थे, मगर वो अमलदार इसके दिल की मोहब्बत से वाकिफ नहीं थे। तो आशिक और माशूक जाने बीच वालों को क्या पता मोहब्बत क्या चीज है, दूसरों को क्या पता। इस सदरुद्दीन ने एक बहुत अच्छा कलाम कहा है कि जो मोहब्बत है जिन्होंने नहीं की उनको मोहब्बत का पता नहीं। प्रेमी जाने प्रेम रस ए भाई, प्रेमी जाने प्रेम रस और न जाने देर बाद हुई। कांवड़िया कासिम अली छबीर दास गरम मिजाज कांवड़िया हमारा, वो चले आए तो किसी ने कहा कि ये कांवड़िया साहब को बुलाए। कांवड़िया साहब के पास गया, उसने हालत देखी, एक वॉलंटियर बुलाया इस बुढ़े को, वो उधर दरवाजे के पास दो लाइनों के पीछे खड़ा कर दो, ये इधर उधर देखो, ध्यान रखो, आवे जावे नहीं, सबको हिलाता फिरता है। तो पड़ा तो और भी जेल की सजा मिल गई। मेरे को दूर खड़ा कर दिया कि मैं मौला को देख भी नहीं सकूं, आंखें कमजोर हैं। बहुत रोया, वॉलंटियर ने खड़ा कर दिया, खुद वॉलंटियर ठहर गया। थोड़ी देर हुई, विसर हुई, सरकार चले आए, ठीक ठाक हो गया। हर रोज मौला हर रोज गाड़ी अंदर आ गई, वहां तक पहुंचे कि जहां हसनाबाद का पड़थार है। आज मौला ने हेनरी ड्राइवर को कहा गाड़ी बाहर खड़ी करो, गाड़ी बाहर खड़ी। सरकार उतरे, मेजर लखपति ने दरवाजा खोला, सैल्यूट किया, मौला बाहर निकले। आहिस्ता आहिस्ता खानाबाद कहते कहते दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे के अंदर दाखिल होके लकड़ी हाथ में थी, ऐसा करके बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। अभी उसको कौन सी चीज दिखनी थी, देखो किस तरह बहाना बनाता है। यह घड़ियाल कभी लगाया, बहुत बरसों से घड़ी लगी है, कभी नहीं पूछा, आज पूछता है। खुदा उन फलाने टाइम पे मुखी जमात खाने को रंग रोगन करो भले खुदा। ऐसा करते करते वो बूढ़ा जो लाइन दूसरी तीसरी लाइन में खड़ा था उसके नजदीक आ गए, और कितना नजदीक आए कि वो जो वॉलंटियर उसकी चौकी पे रखा था कांवड़िया ने, उसके पास आ गया। वॉलंटियर भी ऐसा अटेंशन हो गया, अब मौला सामने है तो उस वॉलंटियर को तो आसमान जमीन में और कुछ नजर ही नहीं आता, और सब कुछ भूल गया कि मेरी चौकी क्या है, जबकि किसी को आगे ना जाने दूं। खड़ा मौला इधर उधर देखते देखते उंगली की उस बुढ़े की तरफ, तुम कभी आए? तो इर्द गिर्द वाला कोई आदमी था, उसने कहा खुदावंद मैं हम तुमको नहीं पूछता। उसको वो बुढ़ा तो रो रहा था, उसकी नजर नीची थी, उसको क्या खबर कि मैं उसको देख सकूंगा। लेकिन उसके दिल के अंदर जो तुनतुना बज रहा था वो इस मौला के दिल के अंदर तुनतुना बजा रहा था। इसको पूछते हैं, मौला तेरे को बुलाते हैं, आगे वाले आदमी हट गए। वॉलंटियर ने देखा ये तो वही आदमी है कि जिसने कांवड़िया को रोका, कांवड़िया ने जिसके लिए रोका था, अब क्या कहे साहब को मना करे। नजदीक आया, कभी आए हो? मौला आज ही आया। कैसे हो? बहुत अच्छा। बाल बच्चे कैसे हैं? खुदा उन तेरी रहमत है। हमारे लिए क्या लाए हो? क्या लाया था? वो सड़े हुए चिबड़े लाया था। हम पूछता ऊपर से मेरे लिए लाए क्या हो? बोला ये लाया हूं। अंदर हाथ डाला, एक नरम चिबड़ा निकला। नजदीक ला के साहब सूंघते हैं कि जैसे गुलाब को सूंघते हैं। माशाल्लाह। वॉलंटियर हमारी गाड़ी में रखो, हेनरी को बोलो इसकी हमारे लिए आइसक्रीम बना ले, बहरे को कहना। घर जाके उसकी आइसक्रीम खाई। जिस मोहब्बत के साथ उसको याद करोगे, उस मोहब्बत के साथ वो तुम्हें याद करेगा। पीर फाजल शाह की वेनती मुंह से, मेरे साथ मुंह से मेहर करो मेहरबान पीर फाजल शाह की विनती मुंह से मेहर करो मेहरबान कर्म करो गे तो शर्म रहेगी। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो मैं मारा जाऊंगा। हम बंदो दो सारी तू तार मिठा शाम समरूं तेरो नाम। दो सारी कहते हैं भटक जाने वाले को। मैं दुनिया में भी फंसा हूं, मुझे दीन भी चाहिए, मैं दोसारी हूं, गुनहगार हूं, भटक जाने वाला हूं, कमजोर हूं। तू मेरा हाथ पकड़, तू कभी रहमत नहीं करेगा तो मेरी शर्म नहीं रहेगी, मेरे ऊपर तू रहम कर। कैसे मीठा तीन पाठ का गिनान, मगर कितनी फिलोसफी, कितना भेद उसके अंदर। तो हमारे जो गिनान हैं, कोई भी गिनान का पाठ उठाओ, आप गिनान के अंदर मिक्स हो जाओ और फिर देखो कि वो गिनान आपके दिल के अंदर बत्ती जला देता है। इंशाल्लाह दीनदारो, अभी मैं थोड़ी ब्रेक के बाद मैं आपके पास वापस हाजिर होऊंगा। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे, हकीकती समझ दे।